आन्या ने उसे अनुरोध किया कि वो उसे अपने साथ ले जाए। लड़का उसे परेशान होकर देखने लगा, पर उसकी आंखों में उम्मीद और उस पर उसका विश्वास देखकर वो सोच में पड़ गया। उसकी बातें सुनकर उसके दिल में भी कुछ अजीब से एहसासों ने जन्म लिया जो उसकी समझ से परे थे। जब लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया तो आन्या निराश हो गई और अपना बैग लेकर वहां से जाने लगी। कुछ पल लड़का परेशान होकर उसे देखता रहा, फिर उसने पीछे से कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर जल्दी से जल्दी तुम्हें अपने लिए कोई काम ढूंढना होगा और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए अलग घर का इंतजाम कर दूंगा। अगर मंजूर हो तो ठीक है, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके शब्द आन्या के कानों में पड़ते ही उसके कदम रुक गए। लबों पर मायूसी की जगह हल्की सी मुस्कान फैल गई। वो झट से उसकी ओर घूम गई और मुस्कुराकर बोली, ठीक है। लड़के ने अपना बैग उठाया और आगे बढ़ गया। आन्या भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। बाहर जाकर लड़के ने एक ऑटो रोका और उसे अंदर बैठने को कहा। उसने उसका बैग भी अंदर रख दिया, फिर खुद अंदर बैठ गया, ऑटो वाले को पता बताया और अपने फ़ोन में लग गया। आन्या कुछ देर उसे खामोशी से देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अब तो अपना नाम बता दो, मुझे पता है इतनी अच्छी सूरत है तो नाम भी अच्छा सा ही होगा। लड़के ने उसकी बात सुनकर फ़ोन पर से नज़रें हटाकर उसकी ओर घुमा ली। आन्या अब भी लबों पर मुस्कान सजाए उसे ही देख रही थी। उसकी मुस्कान देखकर लड़के ने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी बातों से लग रहा था जैसे बहुत दर्द सहा है तुमने बचपन से, फिर भी इतना बोलती हो, हर बात पर मुस्कुरा लेती हो, थकती नहीं खुश रहने का नाटक करते करते? मैं कोई नाटक नहीं करती, मैंने दर्द में भी मुस्कुराना अपनी ज़िंदगी से सीखा है। मेरा मानना है जब दर्द सहना ही है तो मुस्कुरा कर सहो, रोने या उदास होने से कौन सा दर्द कम होगा, वो तो होगा ही, तो बेवजह आंसू क्यों बहाना, मुस्कुराते रहो। एक दिन किस्मत भी थक जाएगी कि इसे कितनी ही तकलीफ दो, पर वो टूटती ही नहीं है, मुस्कुरा कर सब सह जाती है, तो वो खुद ही और दर्द देना बंद कर देगी और अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेगा, आन्या ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर लड़का एकटक उसे देखता रह गया। इतनी सकारात्मकता, जिंदगी जीने का जज्बा शायद उसने पहले कभी किसी लड़की में नहीं देखा था। अक्सर दर्द से लड़ते लड़ते लोग टूट जाते हैं, हार जाते हैं, जिंदगी जीना और मुस्कुराना तक भूल जाते हैं, पर ये लड़की सबसे जुदा थी, अलग ही ऊर्जा थी उसमें। हर गम सहकर भी इतना खुलकर हंसती थी, मुस्कुराती थी कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसने ऐसी मुश्किलों भरी जिंदगी जी है। आन्या अब भी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। अब लड़के ने उस पर से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, अन्वय, अन्वय नाम है मेरा, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारे तरह, सबसे अलग, सबसे ज्यादा खास। आन्या मोहिनी मुस्कान लबों पर सजाए उसे देख रही थी। अन्वय ने अब कोई जवाब नहीं दिया। आन्या ने भी आगे कुछ नहीं कहा, लबों पर मुस्कान सजाए बाहर देखने लगी। अन्वय के माथे पर परेशानी की रेखाएं उभर आई थीं। करीब 25 मिनट बाद ऑटो एक घर के बाहर रुका। अन्वय ने ऑटो वाले को पैसे दिए और आन्या का सामान लेकर ऑटो से उतर गया। आन्या भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर गई। अन्वय सामने वाले घर की तरफ पड़ गया। वो 2-3 मंजिला घर था, देखने में अच्छा लग रहा था, टाइल वगैरह लगाकर अच्छे से बनाया हुआ था, करीब 100 गज का घर था। आन्या उसके पीछे पीछे चल दी। वो गेट पर पहुंचा और डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने एक महिला खड़ी थी। ये माधुरी जी थी, अन्वय की भाभी। अन्वय जब 10 साल का था तब उसके माँ बाप की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। अन्वय भी उनके साथ था, पर उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। ये देखकर सभी हैरान थे, फिर उन्होंने सोचा कि भगवान ने उसे बचा लिया है। तब से वो अपने बड़े भाई के साथ ही रहता था। पहले दोनों भाई एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से और खुशी खुशी रहते थे। लगभग 5 साल पहले मदन जी ने माधुरी जी से शादी की थी। उसके बाद से दोनों भाई के बीच दूरियां आ गईं। वजह बस इतनी थी कि अन्वय उसका सगा भाई नहीं था, इसलिए माधुरी जी नहीं चाहती थीं कि वो उनके साथ रहे। उनके आने के बाद से अन्वय अपने भाई से दूर हो गया था, ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था क्योंकि माधुरी जी उसे अच्छी नहीं लगती थी। माधुरी जी ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर नफरत और गुस्से के भाव आ गए। तभी उनकी नज़र पीछे खड़ी आन्या पर गई। इतनी सुंदर लड़की देखकर वो दंग थी। उन्होंने अन्वय को देखा, फिर अंदर की तरफ सर घुमाकर तेज आवाज में बोली, बाहर आइए, देखिए आपका भाई दुनिया की सैर करके लौट आया है और इस बार अकेले नहीं आया है, अपने साथ किसी लड़की को भी लेकर आया है। पहले से एक बोझ हमारे सर पर पड़ा है, अब एक और आ गई है मुफ्त की रोटियां खाने। उनकी बात सुनकर आन्या की मुस्कान गायब हो गई। वो अन्वय के पीछे खिसक गई और पीछे से उसकी शर्ट को पकड़ लिया। कुछ देर बाद नीचे के कमरे से मदन जी निकलकर बाहर आए और उनके पास आते हुए बोले, क्या हुआ है, क्यों सुबह सुबह अपना गला फाड़ रही हो? मैं तो बस बोल ही रही हूँ, तो आपको इतना बुरा लग रहा है? यहाँ आकर अपने भाई के कारनामे देखिए, हमारी इज्जत को नीलाम करने का फैसला कर लिया है इन्होंने। पहले तो बस घर से गायब ही रहते थे, अब अपने साथ लड़कियों को भी घर लाने लगे हैं। क्या कहेंगे लोग हमारे परिवार के बारे में? उन्होंने चिंगारी लगाई। उनकी बात सुनकर मदन जी गेट पर पहुंचे। अन्वय के पीछे छुपी आन्या उन्हें दिखी ही नहीं। उन्होंने अन्वय को देखकर सवाल किया, अन्वय, ये तुम्हारी भाभी क्या कह रही है और कहाँ थे तुम पिछले एक हफ्ते से? सही कहती है तुम्हारी भाभी, तुमने घर को धर्मशाला बनाया हुआ है, जब मन करता है आते हो, जब मन होता है बिना कुछ बताए चले जाते हो।
अन्वय, तुम बच्चा नहीं हो, घर में रहो, कुछ काम करो, कब तक मैं अकेले सबका खर्चा उठाता रहूंगा?
वो सब तो बाद में देखिएगा, पहले जरा ये पूछिए कि किसे अपने साथ लेकर आया है और क्या रिश्ता है उनका इस लड़की से जो उन्हें घर ले आए हैं। अगर उनका कोई चक्कर चल रहा है तो मैं बता देती हूँ कि या तो ये इस घर में रहेंगे या मैं। मेरी बहन का दिल तोड़ने वाले के साथ मैं नहीं रह सकती, माधुरी जी ने अन्वय के कुछ कहने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। मदन जी आगे कुछ कहते उससे पहले ही अन्वय ने शांत आवाज में कहा, भैया पहले हम अंदर आ जाएं, उसके बाद बात कर लेंगे। मदन जी ने देखा तो उनकी आवाज सुनकर बाहर लोग जमा होने लगे थे, तो वो सामने से हट गए। अन्वय ने आन्या का हाथ थामा और उसे लेकर अंदर चला गया। वो सीधे उसे एक कमरे में लेकर गया और गंभीरता से बोला, यहीं रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद किया और बाहर हॉल में चला गया। आन्या गेट से लगकर खड़ी हो गई ताकि उनकी बातें सुन सके। अन्वय बाहर पहुंचा तो माधुरी जी ने उसे देखकर मुंह घुमा लिया, वहीं मदन जी उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। अन्वय ने हमेशा जैसे गंभीर भाव के साथ उन्हें देखते हुए कहा, भैया भाभी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं किसी काम से नागपुर गया था। जिस लड़की को आपने देखा वो मुझे वापसी में ट्रेन में मिली थी, एक हादसे में उससे उसका परिवार छिन गया, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो लड़की थी, इसलिए मैं उसे अकेला ही छोड़ पाया और यहाँ ले आया। लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिए, वो यहाँ बस तब तक रहेगी जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती, उसके बाद मैं उसके रहने का इंतजाम कहीं और कर दूंगा और मैं और वो आप पर बोझ नहीं बनेंगे। मुझे कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करने का ऑफर मिला था, इंटरव्यू क्लियर हो गया है, मैं वही जॉब ज्वाइन कर लूंगा, बस कुछ दिनों की बात है, उसे यहाँ रहने दीजिए।
बहुत अच्छी कहानी सुनाई है आपने, पर आपकी झूठी बातों में आप अपने भैया को फंसा सकती हैं, मुझे नहीं, सब समझ रही हूँ मैं। मेरी बहन आपको इतने सालों से पसंद करती है, पर आपने कभी उसके तरफ निगाहें उठाकर देखा तक नहीं, उस पर आपको कभी प्यार तो क्या तरस भी नहीं आया, और आज एक लड़की पर इतनी दया आ गई कि उसे सीधे घर ही ले आए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझ रही हूँ कि क्यों आप उसे घर लाए हैं और क्या रिश्ता है आपका उससे। मैं उस लड़की को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसने मेरी बहन के प्यार को छीन लिया है, और अगर आपने अभी इसी वक्त उसे घर से बाहर नहीं निकाला तो आपको भी उसके साथ इस घर से जाना होगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने सीधे सीधे धमकी दे डाली। अन्वय को उनकी बेतुकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा था, पर उसने खुद को संभालते हुए आराम से कहा, देखिए भाभी, आपकी बहन मेरे बारे में क्या सोचती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उसे और आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी अगर वो मेरे पीछे पागल है तो वो उसकी समस्या है, मेरी नहीं। और आप अपनी बहन को समझाने के बजाय मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे आपकी बहन पसंद नहीं है, जब मैं कभी उसका था ही नहीं तो कोई भी मुझे उससे छीन ही नहीं सकता, और जिस लड़की पर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उसके साथ मेरा कोई रिश्ता है इसलिए मैं उसे यहाँ लाई हूँ, तो मैं साफ साफ बता चुका हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, उसे मदद की ज़रूरत है और मैं बस इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा हूँ, तो जब तक उसे जॉब और रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती वो यहीं रहेगी, इसी घर में। जितना ये घर आपका या भैया का है उतना हक मेरा भी है इस घर पर, इसलिए आन्या यहीं रहेगी। देख रहे हैं आप अपने भाई को कैसे बात कर रहा है मुझसे, मेरे फैसले के खिलाफ जा रहा है, मेरी आंखों में देखकर कह रहा है कि ये घर इसका है, और आप खामोशी से अपनी पत्नी की बेइज्जती होते सुन रहे हैं। अन्वय से न जीत पाने की स्थिति में उन्होंने मदन जी को अपनी बातों में फंसाया। उनका दर्द भरा चेहरा देखकर मदन जी ने अन्वय से गुस्से से कहा, अन्वय ये कौन सा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का, वो जो कहती है तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती है, अगर तुम ऐसे किसी लड़की को लाकर घर में बिठा दोगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी मोहल्ले में, तुम जो भी सोचकर उस लड़की को यहाँ लेकर आए हो पर वो यहाँ नहीं रह सकती, जहाँ से उसे लाए हो वहीं छोड़ाओ, और एक आखिरी बात, ये घर मैं चलाता हूँ तो यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा, हम कल ही तुम्हारी भाभी के घर जाएंगे और तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आएंगे, मैं नहीं चाहता तुम फिर किसी दिन किसी और लड़की को उठाकर वहाँ ले आओ, शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी पड़ेगी तुम पर और तुम भी सही रास्ते पर आ जाओगे, उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने भैया के फैसले के खिलाफ नहीं जाओगे। उनका फैसला सुनकर एक पल के लिए अन्वय हैरान रह गया, अगले ही पल उसने बिना किसी भाव के कहा, ठीक है आप चाहते हैं कि मैं आपकी साली से शादी कर लूँ तो मैं कर लूँगा, पर मेरी एक शर्त है, आन्या जब तक चाहे वो यहाँ रहेगी और आप या भाभी उसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे। ये कैसी बात कर रहे हो तुम, जिस घर में एक जवान कुवारा लड़का रहता है वहाँ एक जवान लड़की कैसे रह सकती है, लोग क्या कहेंगे, और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम एक लड़की को हमारे घर में रखोगे और मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवा दूंगी ताकि तुम उसे धोखा दे सको, वो लड़की यहाँ हरगिज नहीं रह सकती, या तो तुम उसे खुद इस घर से बाहर निकालो नहीं तो मैं धक्के मारकर उसे अपने घर से बाहर फेंक दूंगी। माधुरी जी गुस्से में अन्वय के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, पर अन्वय उनके सामने आकर खड़ा हो गया और हल्के गुस्से से बोला, मैंने कहा ना वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मान रहा हूँ ना आपकी बात, आपकी बहन से शादी करने के लिए हाँ कह दिया है ना मैंने, तो अब आपको उसके यहाँ रहने से क्या समस्या है? चिंता मत कीजिए, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, आपकी बहन को धोखा नहीं दूंगा मैं। मुझे ये सब नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। उसे मैं यहाँ लाया हूँ और वो यहीं रहेगी। अगर वो यहाँ रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। माधुरी ने एक बार फिर धमकी दी, पर अन्वय को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपना चेहरा घुमा लिया। टू बी कंटिन्यूड।